Giant Radio, original podcast.
हम जब भी कहीं आर्ट वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आती है वो आती है ड्राइंग या फिर पेंटिंग की, या फिर स्केचिंग की भी कभी कभार। दो आर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले ड्राइंग से स्टार्ट किया था, उससे हमारा अलग ही कनेक्शन है, और इन्वेंटोपीडिया के इस एपिसोड में हम उसी कनेक्शन को और मजबूत करेंगे। कैसे? कैसे? ड्राइंग की हिस्ट्री को समझ के। कब ड्राइंग जैसी चीज आई इस दुनिया में, कैसे कम्युनिकेशन का ये सोर्स एक तरीके के आर्ट में बदल गया, जिसे लोग पूरी दुनिया में पसंद करते हैं। 30,000 ईयर्स पहले ड्राइंग की शुरुआत हुई थी। लोगों को इंडिकेशंस और मैप समझाने के लिए ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता था। बिकॉज बैक देन इट इज जनरली कंसर्न्ड विद द मार्किंग ऑफ लाइंस एंड एरियाज ऑफ टोन ऑन टू पेपर या फिर किसी दूसरे मटेरियल पे भी बना देते थे, जहां पे विजुअल वर्ल्ड की ना एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एकदम बड़ी बड़ी दिखती थी। पहले की ड्रॉइंग्स को ट्रेडिशनल ड्रॉइंग्स का नाम दिया गया था, पता है आपको, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, और कभी कभी उसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ड्रॉइंग रिटन लैंग्वेज की इन्वेंशन से पहले यूज की जाती थी फॉर कम्युनिकेशन, सोचिए। और इसका एविडेंस हम केव्स और रॉक पेंटिंग्स में तो देख ही सकते हैं, जो कि 30,000 ईयर्स पहले होमो सेपियंस ने बनाई थी। होमो सेपियंस कौन थे? ह्यूमंस को ही होमो सेपियंस कहा जाता है। यस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और उन ड्रॉइंग्स में आज की तरह बाउंड्रीज या फिर आज की तरह डिजाइंस नहीं हुआ करती थी, राइट? उन ड्रॉइंग्स को बनाने के लिए स्ट्रेट लाइंस का यूज होता था, ज्यादा से ज्यादा सर्कल्स का यूज होता था, जिसके हेल्प से वो ऑब्जेक्ट डिजाइन किया करते थे, और साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी समझाते थे, और इस वजह से उन ड्रॉइंग्स को पिक्टोग्राम कहा जाता था। क्या? पिक्टोग्राम। प्री हिस्टोरिक टाइम में जितने भी स्केचेस और ड्रॉइंग्स बनी, जो कि स्टाइलिश भी थी और सिंप्लीफाइड वर्जन में भी थी, उन्हीं से इवॉल्व हुई रिटन लैंग्वेज। 14th सेंचुरी से पहले जो आर्टिस्ट होते थे वो वुडन टैबलेट्स पे ड्राइंग बनाते थे। यस, पूरी प्रोडक्शन एक वुडन टैबलेट पे हो जाती थी। उसके बाद 14th सेंचुरी में पेपर इन्वेंट हुआ, तो ड्राइंग आर्ट भी इंक्रीज होने लगा। पेपर आने के बाद भी ड्राइंग को एक टूल की तरह ही यूज किया जाता था, टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन, और ये तब तक चला जब तक फोटोग्राफी वाइडली अवेलेबल नहीं हुआ। यस, फोटोग्राफी ने ड्राइंग को एक टूल से आर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि फोटोग्राफ ने विजुअल फिनोमेना को एक्यूरेट बना दिया, जिसका मतलब जिस चीज को हम जैसा देखेंगे उसको वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसी चीज को सीखने के बाद जो आर्टिस्ट ट्रेडिशनल ड्रॉइंग्स पे निर्भर थे, उन्होंने उसको थोड़ा अवॉइड करना चालू किया और इन सब नई नई चीजों को सीखना चालू किया। अवॉइड इन द सेंस, ट्रेडिशनल ड्रॉइंग्स पे वो हमेशा से हैं, लेकिन ये चीजें उनके लिए नई थी, जिसको टेक्निकली इमेजिनेटिव ओरिजिनलिटी कहा जाता है। और यहां से ड्रॉइंग की मॉडर्नाइजेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। कुछ टाइम बाद आर्टिस्ट्स ने ड्रॉइंग के कुछ नए एस्पेक्ट्स को सीखना चालू किया, या फिर कह लीजिए कि डिस्कवर करना चालू किया, जैसे मटेरियल क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, टोन क्या होता है, फॉर्म क्या होती है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। और सबसे पहले सबने सीखा मटेरियल। इस फेज में आर्टिस्ट को पता चला कि हमें ड्राइंग को पेपर पे सही से प्रेजेंट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, या फिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इसमें सीखा गया कि इंक को कैसे और कितनी बाउंड्री में यूज करना चाहिए, और उस बाउंड्री के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वहां से इंट्रोड्यूस होती है पेंसिल, ऑफकोर्स उसमें यूज होने वाला मटेरियल ग्रेफाइट भी, साथ ही साथ शार्पनर, इरेजर, और जितने भी बेसिक टूल्स हैं वो सारे, जैसे ड्राइंग बोर्ड, टेबल हो गया, ब्लॉटिंग पेपर्स, इंक ड्राइंग के लिए, शीट्स कैसी होनी चाहिए, कितनी लेंथ की होनी चाहिए, ड्राइंग सरफेस पर कंफर्टेबिलिटी कैसे बनाई जाए, ये सब कुछ आ जाता है मटेरियल में। फिर अगला फेज आया जिसमें लोगों ने सीखी टेक्निक। यस, इसमें आर्टिस्ट्स ने सीखा कि मीडिया को शीट या पेपर पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे कई आर्टिस्ट्स अपने हैंड्स का यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, और या फिर जिनकी कभी कभार इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा हाई होती है ड्राइंग के लिए, वो विदाउट आर्म्स भी अपने माउथ का यूज करके बहुत अच्छी शानदार ड्राइंग्स बना देते हैं। इस फेज में सीखा कि सोची हुई चीज को या देखी हुई चीज को शीट पर अप्लाई करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, कौन से तरीके से क्या डिफरेंस आएंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस इफेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रोक भी एक ड्राइंग में चेंज ला सकता है। पैरेलल लाइंस को कैसे यूज करना है, कैसे किसी भी ड्राइंग की एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं, ये तो हो गई भैया आपकी टेक्निक। और ये लोगों ने सीखी, डिस्कवर की, दिनों पे दिन इस पे काम किया। फिर आया ड्राइंग या किसी भी स्केच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टोन। आप शेडिंग तो करते ही होंगे, अगर आप एक ड्राइंग करते होंगे तो आप शेडिंग जरूर करते होंगे। शेडिंग एक ऐसी टेक्निक आर्टिस्ट को पता चली जिससे उनको ये रियलाइज हुआ दैट वी कैन प्ले विद टोनल वैल्यूज ऑन पेपर और शीट, राइट, टू रिप्रेजेंट द शेड ऑफ द मटेरियल्स एज वेल एज द प्लेसमेंट ऑफ शेडोज। आर्टिस्ट्स को पता चला कि शेडोज और हाइलाइट्स इमेज को एक रियलिस्टिक फील देते हैं। बस फिर क्या था, फॉर्म एंड प्रोपोर्शन वाले फेज में हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन का मेजरमेंट लेना सीखा, और पर्सपेक्टिव वाले फेज में लीनियर पर्सपेक्टिव नाम के एक मेथड को सीखा जिसमें हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट करना सीखा। और तब से आज तक इस ड्राइंग और स्केचिंग का आर्ट पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, पूरी दुनिया ने। जिसको ड्राइंग करने का मन नहीं भी होता है ना, वो भी पेंसिल शीट और कलर्स मिलने के बाद कुछ ना कुछ तो शीट पे बना ही देता है। पत्थरों से शुरू हुआ ये आर्ट आज स्क्रीन पर आ गया है। ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में स्क्रीन पे होती है ड्राइंग्स, स्क्रीन पे। सोचिए इतना लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है दैट दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। सो कीप ड्राइंग एंड कीप स्केचिंग एंड कीप चाइमिंग विद चाइम्स रेडियो।